नशे की वजह से कुछ ही देर में शान नींद के आगोश में चला गया तो आरवी ने उसके जूते जुराब खोलकर साइड में रखे और उसको बेड पर अच्छे से लिटा दिया। उसकी ब्लेजर को खोलने के लिए आगे बढ़ी, पर फिर शान का गुस्सा और उसकी नफरत याद करते हुए उसने अपने कदमों को पीछे हटा लिया और सूनी निगाहों से एक टक उसको देखने लगी। आंखों से आंसू बरसते रहे, चेहरा दर्द से सना था। अगले दिन सुबह के 7 बज चुके थे। अर्पिता जी पिछले 1 घंटे से आरवी का इंतजार कर रही थीं। वैसे तो आरवी 6 बजे ही नीचे चली आती थी, पर आज ऐसा नहीं हुआ। अर्पिता जी जब नीचे आईं तो उन्होंने रोज की तरह आरवी को ढूंढा, पर आरवी न मंदिर में दिखी और न ही किचन में वो नजर आई। ये देखकर अर्पिता जी को हैरानी हुई, पर फिर उन्होंने सोचा कि शायद शान कल रात ज्यादा ही देर से आया हो। आरवी जरूर उसका इंतजार कर रही होगी, शायद इसलिए देर से सोने की वजह से उसकी आंख न खुली हो। यही सोचकर वो पूजा की तैयारी में लग गई। 1 घंटा बीत गया, पर आरवी का कुछ हता पता ही नहीं था। सुभाष जी और सुयश जी भी उठ चुके थे, पर आरवी कमरे से बाहर नहीं आई। छाया ने ही दोनों को चाय दी और आरवी के बारे में पूछने पर बता दिया कि कल देर से सोई है, इसलिए अभी जागी नहीं। दोनों ही निश्चिंत होकर चाय पीते हुए बातों में लग गए। आधा घंटा और बीत गया, पर आरवी नहीं आई। अब अर्पिता जी को चिंता होने लगी। पहले भी आरवी रात रात को जागकर शान का इंतजार किया करती थीं, पर कभी उसको उठने में इतनी देर नहीं हुई। वो वक्त पर उठकर अपने काम संभाल लेती थीं। अभी वो ये सोच ही रही थीं कि नन्ही अंशु अपनी उनींदी आंखों को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से मसलते हुए मम्मा मम्मा पुकारते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अर्पिता जी और छाया दोनों ने चौंक कर अंशु को देखा, जो अब भी आधी नींद में थी और आरवी को पुकार रही थी। कहीं वो नींद में सीढ़ियों से ना गिर जाए, यही सोचकर छाया तुरंत भागते हुए उसके पास पहुंच गई और उसको अपनी गोद में उठाकर अर्पिता जी के पास लेकर आ गई। अर्पिता जी, जिन्हें लग रहा था कि आरवी कमरे में सो रही है, जब उन्होंने अंशु को आरवी को ढूंढते हुए नीचे आते देखा, तभी से वो शॉक्ड सी खड़ी थीं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अगर आरवी रूम में है तो अंशु यहाँ क्यों आई उसको ढूंढते हुए, और अगर वो रूम में नहीं है तो कहाँ है। वो इसी सोच में गुम थीं कि अंशु ने अपनी प्यारी प्यारी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, बड़ी दादी मम्मा कहाँ है, मम्मा को बुलाइए ना, बेबी को मम्मा मिल नहीं रही। उसकी आवाज़ अर्पिता जी के कानों में पड़ी तो जैसे वो होश में लौटी। उन्होंने तुरंत ही चिंता भरे लहजे में अंशु से सवाल किया, अंशु बेटा मम्मा रूम में नहीं है। ओहो, मम्मा कहीं भी नहीं है, अंशु इतनी देर से मम्मा को फाइंड कर रही है पर मम्मा मिल ही नहीं रही, आज मम्मा अंशु को जगाने भी नहीं आई और अंशु को किसी भी नहीं दी। अंशु बड़ी ही मासूमियत से आरवी की शिकायत कर रही थी, पर उसकी बातें सुनकर अर्पिता जी परेशान हो गई थीं। उन्होंने अंशु को समझाकर छाया के साथ बाहर सुभाष जी और सुयश जी के पास भेज दिया और खुद कुछ सोचते हुए शान के रूम की तरफ बढ़ गईं। उन्होंने शान के कमरे में कदम रखा। शान ऑफिस के कपड़े पहने अब भी सो रहा था। सुबह सुबह उठने वाला शान अब भी सो रहा था, ये बात उनको खटकी। उन्होंने हर जगह आरवी को ढूंढा, पर उन्हें आरवी कहीं नहीं मिली। आखिर में उन्होंने शान की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो शान के पास पहुंची, उन्हें अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। उन्होंने शान के करीब जाकर सूंघा तो बदबू शान के मुंह से आ रही थी, मतलब वो रात को शराब पीकर आया था। अर्पिता जी ने हैरानी से उसको देखा, क्योंकि शान आज तक कभी शराब पीकर घर नहीं आया था। पहले जब भी पीता था तो इतनी ही पीता था कि हैंडल कर सके, और तब वो ऑफिस में ही रुक जाता था। और जब से आरवी से उसकी शादी हुई थी, वो रोज घर आता था, क्योंकि उसने शराब को लगभग छोड़ ही दिया था। शान ने शराब पी, ये देखकर अर्पिता जी जितनी हैरान थी उससे कहीं गुना ज्यादा गुस्से में बौखला उठी। यहाँ आरवी का कुछ पता नहीं है और वो शराब के नशे में धुत सुकून की नींद ले रहा था, ये देखकर उनकी भौहें तन गईं। अचानक ही उनके दिमाग में एक संभावना ने जन्म लिया कि शान ने नशे की हालत में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आरवी घर में कहीं नहीं है तो कहीं शान ने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि आरवी घर से चली गई। ये बस एक संभावना ही थी जिसके सच होने के चांसेस ना के बराबर थे, पर अर्पिता जी की परेशानी बढ़ चुकी थी। आरवी कहाँ है ये अब सिर्फ शान ही बता सकता था, इसलिए उन्होंने शान को जगाने की कोशिश करने का फैसला लिया। उन्होंने शान को उठाने की कोशिश की, पर वो गहरी नींद में था। जब शान नहीं उठा तो उन्होंने गुस्से में पास रखे पानी के जग का पानी उसके चेहरे पर उड़ेल दिया। इसके साथ ही शान हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया और अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को पोंछते हुए गुस्से में गरजा, ये क्या बदतमीजी है आरवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी डालने की, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा इसलिए शेर को ललकारने आई हो। शान कल रात की बातें लगभग भूल चुका था और जैसे नॉर्मल रहता था वैसे ही बिहेव कर रहा था। उसको लगा कि पानी आरवी ने डाला है तो अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा था। तभी उसके कानों में अर्पिता जी की गुस्से भरी आवाज पड़ी, आरवी नहीं हम हैं, हमने डाला है आपके ऊपर पानी। अर्पिता जी की आवाज सुनकर शान की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने चौंकते हुए निगाहें घुमाकर देखा तो बेड के पास खड़ी अर्पिता जी गुस्से भरी निगाहों से उसे ही घूर रही थी। उन्हें वहां देखकर शान हड़बड़ाया, बड़ी माँ आप यहाँ, उसकी जुबान से ठीक से शब्द भी नहीं निकल सके। उन्हें अचानक वहां देखकर शान की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। अर्पिता जी ने उसका सवाल सुना तो उसको घूरते हुए ही बोली, हाँ हम यहाँ। क्यों हम यहाँ नहीं आ सकते? उल्टा उसी से सवाल कर लिया। शान ने अब खुद को संभाला और आराम से बोला, बिल्कुल आ सकती हैं बड़ी माँ, आपके बेटे का कमरा है। आप जल्दी से यहाँ आती नहीं ना, बस इसलिए मैं थोड़ा हैरान हो गया था। पहले जरूरत महसूस नहीं हुई, पर आज काम आया तो आना पड़ा हमें आपके कमरे में, और अच्छा ही हुआ जो हम यहाँ आ गए। अपनी आंखों से आपको देख लिया तो हमें ये तो पता चला कि कल रात किस जरूरी काम में आपको देर हुई थी। अर्पिता जी की गुस्से भरी घूरती निगाहें अब भी शान पर गड़ी हुई थी। शान नासमझ सा उन्हें देखते हुए बोला, आप कहना क्या चाहती हैं बड़ी माँ? मैं कुछ समझा नहीं, आप इतना गुस्सा क्यों है? अर्पिता जी ने अब भी उसको घूरते हुए कहा, हम क्या कहना चाहते हैं और क्यों आप पर इतना नाराज हो रहे हैं, ये तो हम बाद में आराम से आपको बताएंगे, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। शान ने भौंच खाते हुए पूछा, कैसा सवाल बड़ी माँ? आरवी कहाँ है? टू बी कंटिन्यूड।